ओम शांति। बहुत सारे भाई बहने चलते फिरते पूछते थे उषा दीदी का सेशन कब होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो पहले सुनते हैं और भिन्न भिन्न टीवी चैनल्स पर भी आप उषा बहन जी को आस्था पे, संस्कार पे, जागरण पे सुनते रहते हो समय प्रति समय, तो इसलिए आप सबकी नजरें आपको ढूंढ रही थी। आप आए तो आ गई बहार, आप आए तो आ गया मौसम में निखार, स्वागत है आपका बारंबार, स्वागत है आपका बारंबार। उषा दीदी जी भी हमारे इस ब्रह्मा कुमारीज के सीनियर राजयोगा एंड मेडिटेशन टीचर हैं। बहुत ज्यादा उपलब्धियां हैं आपकी इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में, आपकी कंट्रीब्यूशन और आपकी उपलब्धियां एक शॉर्ट में एक झलक आप सबको दिखाते हैं। आप बहुत बड़े मैनेजमेंट ट्रेनर हैं ब्रह्मा कुमारीज के। 1980 में आपने अपने पूरे जीवन को ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित किया। 1980 से 1992 तक आप हैदराबाद और मुंबई साइड में अपनी सेवाएं दी। 1985 में भारत यूनिटी यूथ मार्च में आपने पार्टिसिपेट किया, और जो विशेष आपकी एक यूनिकनेस है जहां आपकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी को साबित करती हैं कुछ उपलब्धियां आपकी, इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए आपके सेमिनार्स और आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स आपने ये बुक भी लिखी है, और भारत और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके ये कोर्सेज चलते रहते हैं, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक हांगकांग, थाई रेन कंपनी थाईलैंड, पैन एडिवल ऑयल्स मलेशिया, इफको, क्रिप्को, अमूल, बीएसएनएल, गोदरेज, टाटा आयरन एंड स्टील, ओएनजी, आईपीसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एचआरडी फोरास। मैंने बहुत थोड़ी कंपनीज के और इंडस्ट्रीज के नाम पढ़े हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है इस प्रकार की, और अनेक इंडस्ट्री और कंपनीज में आपके कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसके अलावा अनेक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल एसोसिएशंस, कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी आपके कार्यक्रम चलते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बिल्कुल विशेष बात जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी और ने नहीं की, भारत के जो महान शास्त्र हैं रामायण और श्रीमद् भगवत गीता, इन दो शास्त्रों के ऊपर आपने बहुत डीप स्टडी करके रिसर्च किया है, उनके आध्यात्मिक रहस्य क्या है और इनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी आपके पास बकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ये एक एक बात की रहस्य को वर्तमान लाइफ के साथ जोड़ करके उसको क्लियर करते हैं। सिरसा में भी आज से कुछ वर्ष पहले आपका भागवत गीता का सप्ताह चला था, जैसे भक्ति के अंदर आप सोचते हो ना भागवत गीता का सप्ताह चलता है, ऐसे ही इसके आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ आपका जो वक्तव्य है वो पूरे विश्व में अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, और इतनी पकड़ बड़े बड़े शंकराचार्य और बड़े बड़े संतों की इस पर नहीं है, इसलिए आप एक बहुत ग्रेट सेंट हैं, सब संतों से ऊपर हैं इस बात में भी। ऐसी अनेकानेक उपलब्धियां अगर आपको सब बताऊं तो बहुत समय लगेगा। अब मैं आपके और बहन जी के बीच में समय न लेती हुई निवेदन करूंगी उषा बहन जी को कि आज का जो टॉपिक है परम सत्य की पहचान, उस भगवान के लिए, अभी आप भजन भी सुन रहे थे ना, कितने कितने आप मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहाँ कहाँ घूमे और बहुत उलझ जाते हैं कि भगवान कौन है, कोई कहता है फलां भगवान है, कोई कहता है फलां भगवान है, अब हम किसको माने, लेकिन गॉड इज वन भी आप सबने कहा, वो वास्तव में क्या है, वो सारी कहानी, वो गुत्थी आज जो आप सबकी उलझी हुई है आज वो सुलझाएंगे उषा बहन जी। फिर से हम सब कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं उषा बहन जी।
ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आप सभी माउंट आबू में आए हैं और ज्ञान सरोवर के इस परिसर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सवेरे के सत्र में आपने राजयोग का प्रथम सत्र कि राजयोग का मुख्य आधार देखा, स्वयं का परिचय। अभी के जो सत्र में परम सत्य की पहचान कि जो मूल आधार है राजयोग का, क्योंकि अब तक मनुष्य की एक शिकायत बनी है कि ईश्वर को याद करने जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। क्यों भटकता है? क्योंकि शायद हमें यथार्थ परिचय ही नहीं है कि कहां लगाना है, किसमें लगाना है, वो ज्ञान का अभाव है। कुछ समय पहले मैं अमेरिका में गई थी, जहां एक बहन ने मुझे कहा कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो प्रश्न पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है भगवान तो एक होना चाहिए, और अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सबका हेड कौन है? परिवार में भी एक परिवार का बड़ा होता है, तो इन सब भगवानों का हेड कौन है? वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती, और इसलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है कि बेटा मंदिर चलो, कोई विशेष त्योहार होता है तो, वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड कि कहां मैं मन एकाग्र करूं, किसमें एकाग्र करूं, इतनी दुविधा में मैं पड़ जाता हूं कि मुझे लगता है कि मंदिर जाने के बाद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मेरा मन तो लगता नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। वो मां को बड़ा दुख होता था कि मेरे बच्चे के प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाती हूं क्योंकि शायद मुझे ही मालूम नहीं है। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज जो भारत में रह रहे हैं, जिसके पास अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान है, आज मैं अगर आप सबसे यही सवाल पूछूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा आपसे ये सवाल करे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, या मन को किसमें लगाना चाहिए, तो क्या इसका जवाब आपके पास है? इसलिए भी कम से कम आज के जेनरेशन के लिए भी हमें ये उत्तर जानने की जरूरत है कि वो परम शक्ति, परम सत्य क्या है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, नेचर इज गॉड। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो सर्वव्यापी है, कहां नहीं है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो सबूत दीजिए। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा था कि सत्य क्या है? और भी अनेक मतें होंगी ईश्वर के बारे में। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, एक के हाथ में कान आए तो कहा पंखे जैसा है। आखिर सत्य कैसा था? सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है कि ये पांच सूरदासों ने जो हाथी के विषय में वर्णन किया उसमें सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? सत्य कुछ और है। इस कहानी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है जिसने महसूस भी नहीं किया है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये वन बाय वन जाते हैं, एक एक जाकर के उस सूरदास जो दूर बैठा है उसको बताते हैं। ये पांचों की बातें सुनने के बाद वो छठा सूरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा है? कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा कि एक एक आता एक ही प्राणी के लिए इतनी सारी बातें बता रहा, फिर भी वो मान लेता है, विश्वास कर लेता है कि चलो इन्होंने तो महसूस किया है, हो सकता है ऐसा कोई जानवर होगा जो समय प्रति समय रंग बदल रहा है या रूप बदल रहा है। उसकी कल्पना शक्ति के आधार पर उसने विश्वास किया कि इन्होंने तो महसूस किया है ना। अब वो छठे सूरदास को कहा जाए एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, अब जो तुमने समझा तुम्हें जाकर उसको बताना है, तो क्या कहेगा कि भाई मैंने सुना है, मैंने तो महसूस नहीं किया है, मैंने सुना है, वो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। और सारी बातें सुनने के बाद वो सातवां सूरदास क्या कहेगा, क्या समझेगा और क्या कहेगा? क्या कहेगा? बकवास, ऐसा कोई प्राणी होता है क्या? तुम भी ऐसा विश्वास करने लगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यही कहेगा ना। ठीक इसी तरह ये कंफ्यूजन जो दुनिया के अंदर ईश्वर को लेकर के बना है, वो इसी कारण से बना क्योंकि आज हर मनुष्य किसी के पास भी दुनिया में ज्ञान के दिव्य चक्षु नहीं है, और वो चक्षु न होने कारण आज हर इंसान नयनहीन सुरदास है। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से ईश्वर के विषय में कुछ महसूस किया। हर एक ने अपनी अपनी तरह से, अपने अपने बुद्धि की क्षमता से उसको महसूस किया, है ना? उन्होंने मनुष्य को बताया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया। ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते हैं, उन्होंने महसूस किया तभी तो बताया है। वो छठे सूरदास की तरह उन्होंने भी महसूस नहीं किया है, लेकिन विश्वास कर लिया, विश्वास कर लिया। और इसलिए जितने भी स्वरूप बताए गए सबके फोटो लगा दिए घर में, ताकि कोई नाराज नहीं होना चाहिए, या जो भी सत्य हो, है ना? और पूजा पाठ करने लगे, मंदिरों में भी सब मूर्तियां लगा देते हैं, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। अब वो अपनी जनरेशन को बताते हैं कि ये सब भगवान है। अब आज की जनरेशन विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? बकवास, ऐसे कोई भगवान होते? इतने सारे भगवान होते हम नहीं मानते। आपके पास कोई सबूत है दिखाओ। और इसीलिए नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसी ने समझा ही नहीं है, और इसलिए इतना कंफ्यूजन आज ईश्वर के बारे में हो गया कि सत्य क्या है, ये प्रश्न ही हो गया है, है ना? आप सभी से एक निवेदन है, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए या तो साइलेंट मोड पर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी कहा जाता है कि मोबाइल एक साधन है, साधन को मालिक बन के प्रयोग करो, उसके गुलाम बन के नहीं। वो हमें डिस्टर्ब करता रहे तो आप गुलाम हो गए कि मालिक हो गए? तो इसीलिए गुलाम नहीं बनो, मालिक बन के प्रयोग करो। जब आपको काम हो तब आप उसका मुंह चालू करो, जब आपको काम नहीं है तो न आपको डिस्टर्ब करे न दूसरों को डिस्टर्ब करे। क्योंकि जब हम सामने से देखते हैं ना, तो आपके आसपास में जो बैठे होते हैं उसका चेहरा ऐसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है एकदम, कितना उनको परेशान हो रहे हैं वो उस मोबाइल से। और वैसे भी कहा जाता है तीन स्थान ऐसे हैं जहां मोबाइल का मुंह बंद रखना ज्यादा उचित है। पहला कि जब खाना खाने बैठे हो ना, तो शांति से खाना खाओ, मुंह बंद रखो उसका। नहीं तो कई लोगों को देखा मोबाइल पर बात कर रहे, सामने वाला कोई टेंशन दे रहा है, गुस्सा भी कर रहे, खा भी रहे हैं, अब वो खाना क्या हजम होगा और क्या शरीर को लगेगा। इसलिए एक तो खाने के वक्त उसका मुंह बंद करना ज्यादा उचित है, शांति से खाना खा लेना चाहिए। दूसरा, जब नहाने जाओ ना तब मोबाइल को लेके नहीं जाओ। अरे आप अपने पर्सनल काम में है, उस समय मोबाइल की क्या जरूरत है? वो उस समय भी आपको डिस्टर्ब करता रहे, है ना? और तीसरा, जब ऐसे सत्संग में बैठे हो, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो अच्छी बातों में वो आपके मन की एकाग्रता को तोड़ता रहे, तो बैठने का फायदा ही क्या होता है फिर तो, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा गुलाम बन के प्रयोग नहीं करो, मालिक बन के प्रयोग करो। जब आपको जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसको चालू करो, नहीं तो ज्यादा बंद रखना उचित रहेगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके आसपास या पूरे हॉल वालों का ध्यान या एकाग्रता भंग होती है, तो दूसरे की एकाग्रता को भंग करना ये भी तो एक पाप के खाते में ही जाता है कि कोई अच्छी बातें सुन रहे हैं। तो इसीलिए इतना निवेदन रहेगा। भावार्थ ये कि हम ये देख रहे थे कि आज ईश्वर के बारे में इतना सारा कंफ्यूजन क्यों होने लगा है, क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य ने खुद तो महसूस किया नहीं, न ज्ञान के चक्षु है, और इसीलिए इतने सारे ओपिनियन जो उसके पास आए, भले सब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद भी सोचता है कि शायद सभी सत्य होगा। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया क्या हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हो गई है, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देना चाहते हैं। जैसे एक जवेरी होता है, उसके पास कसौटी रहती जिस पर कसकर वो देखता है सोना कितना कैरेट का है, ठीक इसी तरह ईश्वर को परखने की कसौटी क्या है, वो कसौटी आज हम आपको देते हैं, जिस पर आप अपनी मत को भी कसकर देखिए सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करिए। पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमात्मा, उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा उसको कहा जाता है जो सभी चक्र से परे, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, तो जो सभी चक्रों से परे उसको कहेंगे परमात्मा। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता हो, जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, सब कुछ जानता है। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ और धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी वो अपरंपार महिमा जिसकी है उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, उस पर कस कर देखो एक एक मत को, कि जब हम कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर है, क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी, क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे, क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है, करेंगे प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे, किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। अर्थात प्रकृति जिस चित्रकार का चित्र है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य किसको कहे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो इसका मतलब प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, या ज्ञान था, अज्ञानता के कारण मान लिया हमने। सत्य ये है प्रकृति परमेश्वर की रचना है। क्लियर? आगे बढ़े, बढ़े आगे। दूसरा, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों में जाकर हमने ये क्यों गाया कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है कहना ठीक है ना? तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है ना? वो ज्ञान तो नहीं है, अज्ञानता के कारण कह दिया, बाकी सत्य तो नहीं है ये। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। आज इस संसार के अंदर मनुष्य कोई भी डिग्री अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से या पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? नहीं बन सकता। पिता जैसा है ना, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभालेगा, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा करेगा, परंतु जब वो पिता के सामने जाएगा तब बच्चा ही रहेगा। ठीक इसी तरह मनुष्य आत्माएं भी पुरुषार्थ करते तो पिता जैसा बन सकते, पिता नहीं बन सकते, परमात्मा जैसा। इसीलिए आज मनुष्य ने जैसा कर्म किया, किसी ने पुण्य कर्म किया तो पुण्यात्मा बन गया, किसी ने महान कर्म किया तो महात्मा बन गया, किसी ने धर्म का काम किया तो धर्मात्मा बन गया, किसी ने दिव्य कर्म किया तो देवात्मा बन गया। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है। और ये सब भी आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और देव आत्माएं भी भारत में कितनी दिखाते हैं? 33 करोड़ देवी देवता है, देव आत्माएं। तो देव आत्माएं भी अनेक है लेकिन परमात्मा एक है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, एक बड़ी परमात्मा है, उसके हम टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे आए और फिर अंत में जाकर के उसमें लीन हो जाना, परमात्मा बन जाना है, ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो तत्व है। आत्मा या परमात्मा तत्व नहीं है, इसलिए ये कंपैरिजन ही गलत हो जाती है। जो एक शक्ति है, शक्ति के लिए तो हमेशा यही कहा जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, न उसका क्रिएशन है ना वो खत्म हो सकती है। बुदबुदा सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। जबकि आत्मा के लिए तो गीता के अंदर दूसरे अध्याय में यही कहा, अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर जर्जर भी नहीं होती है, शरीर जर्जर होता है, आत्मा जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, और अविनाशी जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता, जो सदा शाश्वत है। तो वो परमात्मा में मिलेगी कैसे, या उसका टुकड़ा कैसे होगी? अविनाशी है, न उसका टुकड़ा हो सकता है, न वो जाकर के मिल सकती है। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है, सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? संतान है कहना सत्य। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? वंश है, हम अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है, वंश है उसके, संतान जरूर है। क्लियर? कोई प्रश्न? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते ब्रह्म ईश्वर है, देखो अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते आए। प्रकृति परमेश्वर है भी कहा, प्रकृति परमेश्वर की रचना भी कहा, आत्मा सो परमात्मा भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान भी कहा। इसी तरह एक तरफ कहते ब्रह्म ईश्वर है तो दूसरी ओर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जो ये पांच तत्वों की दुनिया से ऊपर, जो एक छठा दिव्य लोक है जहां आत्माएं भी निवास करती है, पिता परमात्मा भी निवास करते हैं, वो पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। क्लियर? आगे बढ़े। चौथी मत, जब हम कहते सर्वव्यापी है, कण कण में ईश्वर है, क्या सचमुच कण कण में ईश्वर है? कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार कर सकता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? नहीं। लेकिन तब मनुष्य क्या कहते कि नहीं, सभी प्राणी मात्र में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर सब में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है, और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को बुरे कर्म करने से रोक सके? तो फिर उसका बैठने का कोई मतलब है? कोई मतलब? आज घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप अगर सामने बैठे, बच्चे अगर आपस में लड़ने लगे तो माँ बाप देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकता है। तो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, और वो अगर सब में बैठा हुआ है और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसका बैठने का मतलब क्या हुआ फिर? तो देखो, आज जब कोई चीज आपसे पूछते हैं या बताते हैं और आपको मालूम नहीं होती है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है? अनजानेपन में भी मुख से यही निकलता है कि ऊपर वाला जाने। उसकी महिमा में भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा दाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन है ना। श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान ने चौथे अध्याय में कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं संसार में आता हूं, तो नहीं होगा तभी तो आएगा। अगर यही हो तो कौन आएगा? अगर यही हो तो उसके होते इतना अधर्म कैसे? कई प्रश्न है। आज प्रकृति के अंदर भी एक गुण है कि अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो लोहा जब अग्नि के संग में आता है तो अग्नि का संग का रंग लग जाता है, वो भी गर्म और लाल हो जाता है ना, संग का रंग। मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो संग का रंग लगता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है ना। परमात्मा अगर हम सबके अंदर बैठा हो, वो गुणों में अनंत हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न चढ़े, ऐसा हो सकता है? लेकिन तब फिर बात आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्र में ही आती है, तो क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र भी गलत नहीं है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे, ऋषि मुनियों ने लिखे ना। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र कैसे लिखे? तो कुछ दिव्य अनुभव के आधार पर लिखे। और जब उन्होंने अपनी तपस्या में ये देखा कि जब कली काल आएगा तो घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य आत्मा को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है ना। भावार्थ ये कि ऋषि मुनि जानते थे कि कली काल में जब मनुष्य इतने पाप कर्म करेंगे तो मनुष्य आत्मा को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है। ताकि मनुष्य को एक डर रहे और पाप कर्म कम करे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस वक्त माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाएगी और कहेगी देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे। और वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, जैसे ही बाहर कुत्ता गाय देखेगा क्या करेगा, वापस अंदर आ जाएगा और खुश होता है, मैं सुरक्षित हूं, है ना। परंतु वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, चार पांच साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसते हुए निकल जाता है ना। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने जब ये बात कही शास्त्र में, कली काल आरंभ हुआ था, और इसीलिए मनुष्य को पाप कर्म से बचाने के लिए, और उस समय अगर कोई किसी को प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए, तो क्या कहते थे मनुष्य, क्या कहते थे? यही कहते थे कि बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज की दुनिया में, विज्ञान के युग में, मनुष्य बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, और इसीलिए कोई अगर किसी को याद भी दिलाता है क्यों इतना पाप कर रहा है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, क्या कहता है, अरे बाल बच्चे वाला हूँ, वही डायलॉग, टोन बदल जाता, अरे बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। पहले क्या कहता था, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है। और आज अगर कोई कहता है उसको कि तो ऊपर वाला देख रहा है, तो क्या कहता है, क्यों देखता क्यों है, वो छुड़ाए ना, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, यानी वो डर भी नहीं रहा। तो सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। ये नहीं कि माइक में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा है इसलिए मैं बैठ के इसकी पूजा करूं, ये सोफा में परमात्मा है तो बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। इसीलिए कहा सर्वव्यापी भावनात्मक, के उस भावना को लेकर जीवन में चलो, कभी कोई गलत काम नहीं होगा, कभी कोई पाप कर्म नहीं होगा, लेकिन सिद्धांतिक रूप से मानने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि कई बार हमें कई बहस करके प्रश्न पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, हम उनको एक ही बात पूछते हैं, आप मानते हैं, कहते हैं हाँ हम मानते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, तो हम यही कहते हैं फिर उनको, इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, क्योंकि जो ये मान के चल रहा हो कि ईश्वर हर जगह है, उससे कभी कोई गलत काम होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब जो मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो तब क्या कहते वो, नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, आपको जब मानना नहीं है, आपको पाप कर्म करना है और फिर एडवोकेट करना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या मतलब आया, जब आप स्वीकार नहीं करते तो एडवोकेट करने की जरूरत क्या है। इसीलिए कहा ये भावनात्मक सत्य है, भावना है एक, उसको लेकर चलो, बहुत ऊंची बात है, हम भी स्वीकार करते उस बात को कि आज हम बाहर जा रहे हो और कोई हमें कहता है बहन जी अब अकेले जा रहे हैं, हम कहेंगे नहीं भगवान हमारे साथ है, इस भावना को लेकर चलो, बड़ी ऊंची बात है। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न किसी को, आगे बढ़े। पांचवी बात जब कहते निराकार है, ना नाम है ना रूप है ना आकार है, अब नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है, हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है, और शांत प्रकृति दिखाना है तो भी दिखा सकता है, कितनी शांत प्रकृति है, जैसे हवा चली नहीं रही है, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाई दे रहा है, जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है, है? नहीं है। तो क्या स्वयं परमात्मा नाम रूप आकार बिना हो सकता है? तो निराकार किस भाव से कहा, जैसे परमात्मा की महिमा में उसको निर्गुण भी कहा जाता है, निर्गुण का भी शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना ही, लेकिन परमात्मा तो गुणों में अनंत है, तो फिर निर्गुण किस भाव से कहा कि जिसके गुण प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, यानी सात्विक राजसिक तामसिक से ऊपर है, अनंत है। इसी तरह निराकार माना जिसकी आकृति साकार से ऊपर है, उसको कहा निराकार। तो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन उसकी अपनी आकृति तो है, वो कौन सी है? तो जैसे एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। अगर आत्मा ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है। जिसकी मान्यता क्या सभी धर्म में है, उसी ज्योति पुंज स्वरूप परमात्मा की मान्यता भारत में हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम यानी जब मनुष्य पूजा करने जाते हैं तो ये पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा करते हैं। लिंग का मतलब है आकृति, तो जो ज्योति की आकृति है ज्योति की पूजा कैसे करें? इसलिए भारतवासियों ने हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जहां अपने भावनाओं को अर्पित कर सके, इसीलिए कहा ज्योतिर्लिंगम। लेकिन नाम दिया सदाशिव, गुणवाचक नाम है कि जो सदा कल्याण करने वाले हैं, किसी का अकल्याण नहीं करते, जो सबका कल्याण करते हैं। मनुष्य के नाम है ना गुणवाचक नहीं होते, किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, है ना, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद लेकिन होगा फकीर चंद, त्रिलोक चंद कहां है, एक झोपड़ी भी नहीं होगी उसके पास और त्रिलोक चंद। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर लगा दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई, है ना, और कहीं कहीं एक नाम से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो दो दो नाम भी जोड़ दिए, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, है ना, डबल नाम चाहिए, गौरी शंकर, सीताराम, है ना, और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम मिलेंगे, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी, है ना। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है, और इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम है जो आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, तो साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, तो ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर नेपाल जाओ तो पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। तो भारत भर में उसकी पूजा होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी, तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। इसलिए भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो, इसीलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। श्री राम ने भी रामेश्वरम में जिसकी पूजा की और उसके बाद रावण से युद्ध करने के लिए गए। भावार्थ ये कि अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव से। और वो जानते थे कि शिव की शक्ति के आगे मुकाबला करना, मैं हार जाऊंगा। इसलिए उन्होंने भी पहले महादेव जी से पूजा करते हुए शक्ति प्राप्त किया। इसी तरह कुरुक्षेत्र में चले जाओ, आज भी वहां दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी स्थानेश्वर की पूजा की थी, पांडवों से भी कराई थी। उसके बाद हर हर महादेव करके युद्ध आरंभ हुआ। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्हें पूजा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था, जो महादेव की शक्ति के बिना संभव नहीं था। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए, असुर संगारनी शिव शक्तियां हैं, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का आइडेंटिटी, स्वरूप भी अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है, एक है सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश, प्रलय हो जाता है, तो उसको प्रलयनाथ कहा, वो भोलेनाथ है। तो जहां नाम अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है, फिर एक कैसे हो सकते हैं? ओम नमः शिवाय का मंत्र देते हैं, किसी ने आज दिन तक ओम नमः शंकराय जपा? अगर एक है तो जपना चाहिए। भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसको कभी शंकर रात्रि कहते हैं। शिव को ज्योतिर्लिंगम कहा और शंकर को पूरी फैमिली के साथ दिखाते हैं, है ना, पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय है, पूरी फैमिली है, गृहस्थी है। तो जहां नाम अलग, रूप अलग, कार्य अलग, सारा परिवार उसका अपना है, तो एक कैसे हो सकता है? शंकर को हमेशा ध्यान अवस्था में दिखाते, किसका ध्यान किया? जो भी कैलाश मानसरोवर होकर के आते हैं, वो यही कहते कि कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है, और कैलाश पर बैठ करके शंकर ने भी किसका ध्यान किया? इसका मतलब शिव का ध्यान किया। अब शंकर को ध्यान करने की क्या जरूरत थी? चलो श्री राम को तो रावण से युद्ध करना था, इसलिए शक्ति चाहिए थी। श्री कृष्ण को अधर्म पर विजय प्राप्त कराना था, इसीलिए शक्ति चाहिए थी। शंकर को ध्यान करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब जाकर के ये कार्य कर सके, जो ध्यान और एकाग्रता द्वारा उसने प्राप्त की, और तब अपना कार्य कर सके। तो ये हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए, इस्लाम धर्म में जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु मक्का जब जाते हैं हज के लिए, वैसे हज में हर कोई नहीं जा सकता, हज में जाने के नियम भी बड़े कड़े हैं, कायदे बहुत कड़क है, लेकिन जो हज में जाता है तो वहां पर काबा का पवित्र पत्थर है, निराकार है। ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है, और कहानी ये है कि पहले मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हरेक के अपने अपने इष्ट होते थे, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ कि क्या ये हमारे अल्लाह नहीं है, उसने कहा अल्लाह एक है। खूब लड़ाई झगड़ा होने के बाद उसको मदीना भेज दिया गया और यहां इनकी पूजा पाठ आदि चलती रही। फिर भी वहां वो अपनी क्रांति चलाते रहे कि अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस बात से जुड़ते गए। जब काफी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए तो पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा भी हुआ। उस समय कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई, आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था इसलिए उसको काबा का पवित्र पत्थर माना जाता है और उसका नाम है संगे अस्वद। जब मुसलमान लोग जाते हैं हज के लिए तो ये पवित्र पत्थर का दर्शन करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं और 7 बार इसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और किसी मस्जिद में नहीं होती है। और 7 बार परिक्रमा करने के बाद ये पवित्र पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। अब जब कहा कि अल्लाह नूर है तो नूर का मतलब ज्योति, प्रकाश। ज्योति का मतलब प्रकाश, नूर का मतलब भी प्रकाश, ज्योति का मतलब भी प्रकाश। तो बात एक ही है या अलग है? एक ही है ना? और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो कहा जाता कि मोसेस जब माउंटेन पर गए थे जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले, उस वक्त उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देखकर मूसा ने कहा, हजरत मूसा ने कहा यहोवा यानी द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसीलिए उसके अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही कहा है, प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये है प्रभु किसको कहा? आज भी वेटिकन सिटी चले जाओ जहां सबसे बड़ा चर्च है, जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का सिंबल गॉड के रूप में वहां रखा हुआ है, जिसको क्रिश्चियनों ने गॉड कहा, लाइट कहा, गॉड इज लाइट। मुसलमानों ने अल्लाह नूर है कहा, हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंगम कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सत्य नाम अकाल मूरत जूनी, कितना सुंदर रीति से गाया है, इतना स्पष्ट और किसी ने नहीं कहा है। इसीलिए कहा जाता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए जैन धर्म में दिखाते हैं 24 तीर्थंकर है और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए गए। महावीर ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसको ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहे हैं? जिसके लिए जैनी लोग कहते हैं सिद्ध शिलापति का ध्यान करते, परमात्मा को कहते सिद्ध शिलापति यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। और उस श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। ज्ञान चाहिए ज्ञान के चक्षु जब खुलते हैं तो उसका दर्शन होता है और चरित्र श्रेष्ठ चाहिए। आज भी दिवाली के दिन जब वो महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो हमें भी प्राप्त हो। ये शिव धाम कौन सा है और शिव कौन है? और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन उसको भी ध्यान मुद्रा में दिखाया है। किसका ध्यान करते हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, जिसको कहा चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, कि जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती, इसीलिए उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। इसी अखंड ज्योत को परमेश्वर का रूप माना गया है। तो सर्वधर्म मान्य कौन हुआ? पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य कौन हुआ? ज्योति कहो, नूर कहो, प्रकाश कहो, निराकार कहो, लाइट कहो, जो भी कहो, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, वाहेगुरु कहा, लेकिन है तो वो एक ही है ना। आज आपको कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन स्वरूप तो एक ही है या हर बार अलग अलग स्वरूप हो जाता है? एक ही है ना। ठीक इसी तरह परमात्मा को भी किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, मालिक कहा, प्रभु कहा, सिद्ध शिलापति कहा, चिंकुन सेकी कहा, पर है तो वो एक ही, स्वरूप एक ही है। तो सर्वधर्म मान्य एक ही है सत्य। सर्वोच्च शक्ति जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा करके दिखाया, सिद्ध शिलापति, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च शक्ति जिसके न कोई माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न गुरु है, वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक है। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, इसीलिए उसको सर्वोच्च शक्ति कहा गया। वही सभी चक्रों से परे है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, जो सभी चक्र से परे है। इसलिए गीता के 4th अध्याय में भगवान ने कहा, मैं अजन्मा, काल मुझे नहीं खा सकता, मैं अकाल मूरत हूं, मैं अव्यक्त हूं, मुझे कोई व्यक्त आकृति नहीं है, मैं अव्यक्त पुरुष हूं, अकर्ता भोक्ता हूं। ये गीता के महावाक्य है, अकर्ता भोक्ता हूं, दुख हरता सुख करता, दुख हरने वाला हूं, सुख प्रदान करने वाला। तो जो सभी चक्र से परे है, इसीलिए तो अर्जुन को भी जब संशय पड़ा कि हे प्रभु, आपने तो जन्म लिया, आप तो कर्ता पुरुष हो, फिर कैसे ये शब्द कह सकते हो? कृपा करके मुझे ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करिए, मैं आपका वास्तविक स्वरूप देखना चाहता हूं। और तब कहा जाता भगवान ने उसको दिव्य चक्षु प्रदान किया, और उससे जो स्वरूप का दर्शन हुआ कौन सा था, कौन सा था? हाँ, नहीं, विराट स्वरूप नहीं था। पहला जो स्वरूप देखा उन्होंने, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, जिसका तेज अर्जुन भी सह नहीं कर सका और कहा बस करो प्रभु, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा। जो हजारों सूर्य एक साथ आकाश मंडल में उदय हो गए हो, इतना तेजोमय स्वरूप था। और उसके बाद विराट रूप दिखाया। विराट रूप किसका था? वो परमात्मा का नहीं था, श्री कृष्ण का था, कि जिसको तुम देख रहा है, जो अनेक पुनर्जन्म में आया है। तो विराट रूप में जो चेहरे हैं, यानी ये श्री कृष्ण के इतने पुनर्जन्म के जो चेहरे थे, ये अनेक पुनर्जन्म में आने वाला और मैं अजन्मा, जो प्रकाश स्वरूप तेजोमय स्वरूप, तो ये दोनों स्वरूप स्पष्ट करके दिखाया कि श्री कृष्ण पुनर्जन्म में आने वाला और परमात्मा जो अजन्मा है, ये दोनों स्वरूप का साक्षात्कार कराया। लेकिन हम समझ नहीं पाए या किसी ने उसको स्पष्ट किया नहीं, जबकि गीता के अंदर दोनों स्वरूप दिखाए कि अजन्मा स्वरूप परमात्मा का कौन सा है और श्री कृष्ण कौन है। इसीलिए सारे गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच आता है। कि बोलने वाली शक्ति कौन थी? परमात्मा थे, भगवान उवाच। किसके माध्यम से बोला? श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति, जो अजन्मा थी, जिसने परकाया प्रवेश किया, वो परमेश्वर था। और इसीलिए उसने दोनों स्वरूप को दिखा दिया कि मैं कौन और ये कौन। लेकिन हम लोग कभी उस बात को समझ नहीं पाए। तो वो अजन्मा स्वरूप वो परमात्मा का है, जो अवतरित होता है, जो किसी माता के गर्भ में नहीं आता है, जो पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता है, वही अकाल मूरत है। और सर्वोपरि होने के बावजूद भी वही सर्वज्ञ भी है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है और ये तीन लकीर माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का दर्शन कराने वाला। और सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। वो तीन लकीरों के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला, जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सके, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए। अर्थात के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, त्रिमूर्ति है, जीओडी गॉड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। यानी परमात्मा खुद कर्म नहीं करता, लेकिन ये तीन मूर्तियों द्वारा कराने वाला। इसलिए परमात्मा को कहते करण करावनहार, वही है, खुद करता नहीं है, कराता है। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन का कार्य करते हैं, विष्णु द्वारा पालना का कार्य करता है, और शंकर के द्वारा महाविनाश का कार्य कराने वाला कौन? परमात्मा। लेकिन यहां भारतवासियों को एक प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है कि जो ब्रह्मा का चित्र यहां दिखाया और जो ब्रह्मा का चित्र भक्ति में देखा, दोनों में अंतर है, इसको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? भक्ति में जो हमने ब्रह्मा का चित्र देखा कि ब्रह्मा एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, बाकी कोई देवताओं को दाढ़ी मुछ नहीं दिखाई है, वृद्ध अवस्था नहीं दिखाई। एक ही देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मुछ और वृद्ध अवस्था है, यानी किसी बात का प्रतीक है। आज की दुनिया में कोई बच्चा दो मुंह वाला पैदा होता है तो क्या कहते हैं? एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा हुआ। ब्रह्मा को चार मुखधारी दिखाए फिर भी उसको एबनॉर्मल नहीं कहा। और चार मुख का मतलब क्या है, ये भी किसी बात का प्रतीक है। अच्छा, कमल के ऊपर कोई बैठ सकते हैं, उसको कमल आसनधारी, यानी ये भी किसी बात का प्रतीक है। और ब्रह्मा को सारे शास्त्र दिखाए गए हैं हाथ में, वेद पुराण उपनिषद। अब ब्रह्मा को शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत थी, ये भी किसी बात का प्रतीक है। तो क्या प्रतीक है, तो परमात्मा को जब एक नई सृष्टि का सृजन कराना है, उस समय ये दुनिया में कौन सा समय चल रहा था, तो मनुष्य सृष्टि थी। यहां न देवों की सृष्टि थी न असुरों की सृष्टि थी, लेकिन दाढ़ी मूछ और वृद्ध अवस्था ये मनुष्य सृष्टि का प्रतीक है कि जब घोर पापाचार था और उसका नाश करा के एक नई दुनिया की सृजन का कार्य कराना था, तो उस समय कौन सा समय चल रहा था, मनुष्य सृष्टि का समय चल रहा था। और परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो जैसे गीता के सातवें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, क्योंकि यहां अगर श्री कृष्ण के रूप में आए तो लोग उसको अपना कार्य करने देंगे या दर्शन की भीड़ मचा देंगे, क्या करेंगे, हा? दर्शन की भीड़, काम ही नहीं करने देंगे उसको। इसलिए भगवान ने कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला, करोड़ों में कोई और उसमें भी कोई विरला, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरे को प्राप्त करते हैं। तो अति साधारण रूप कौन सा होता है, मनुष्य स्वरूप, तभी तो मनुष्य पहचान नहीं सकते। और इसीलिए परमात्मा जन्म मरण के चक्र से परे हैं तो अवतरित होते हैं। तो एक साधारण वृद्ध तन में, अनुभवी तन में प्रवेश करते हैं और आकर सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके जीवन को प्यूरिफाई करते हैं। तो उस समय संसार कीचड़ जैसा था और उस कीचड़ में कमल को खिलाया, यानी उसके जीवन को प्यूरिफाई कर दिया। और प्यूरिफाई कैसे किया, तो ज्ञान के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए, वेद पुराण उपनिषद सब शास्त्र दिखाए, क्यों कि सभी शास्त्रों का निचोड़ सुनाया। किसको सुनाया, खाली हिंदू धर्म वालों को नहीं, लेकिन संसार की सभी आत्माओं को। इसीलिए चार दिशा में चार मुख है कि वो ज्ञान जो प्रवाहित हुआ वो संसार के चारों दिशा में फैला। और फैला कैसे, तो सहस्त्र भुजाओं के द्वारा। इसीलिए ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाधारी दिखाते हैं। जैसे आज कोई हमारा मददगार होता है तो क्या कहते हैं, ये मेरा राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, कहते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो इसी तरह परमात्मा के इस नई सृष्टि के सृजन के कार्य में हजारों आत्माएं जुड़ गई, उसके मददगार बन गए, इसकी भुजाएं बन गई। तो भुजा मददगार की निशानी है। तो वो कार्य परमात्मा इस वक्त आकर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया ब्रह्मा, जो इस कार्य के लिए निमित्त बना है। और वो परमेश्वर सर्व गुणों में अनंत है। ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, बिंदु की व्याख्या क्या होती है, अनंत। डायमेंशन लेस, मेजरमेंट लेस, उसको कहते इन्फिनिट, अनंत है। तो परमात्मा सर्व गुणों में अनंत है, यानी रूप में भले बिंदु है पर बिंदु में सिंधु है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए, वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ये पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता है। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये पांच बातों को देखा, जिसका नाम है सदाशिव, यहोवा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, मालिक, वाहेगुरु या सिद्ध शिलापति चिंकुन सेकी, जो भी कहो, स्वरूप उनका कौन सा है? अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार परमात्मा का प्रकाश स्वरूप तेजो मय नूर लाइट अखंड ज्योति। उसके क्वालिफिकेशन 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। और उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। हाँ, परमात्मा का एड्रेस कौन सा है? सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, परम धाम का निवासी है, मोक्ष धाम का निवासी है, जिसको अनेक नामों से जाना गया। किसी ने मोक्ष धाम कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने परम धाम शांति धाम कहा, किसी ने हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, किसी ने रूहानी दुनिया कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने सातवां आसमान कहा। ये उसी दुनिया के निवासी, गीता में इसीलिए कहा, जहाँ सूर्य चंद्र तारों की रोशनी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, वो धाम मेरा धाम है। और उसका कर्तव्य क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है, तब तब अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना कराना, करण करावन हार वो बन करके ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश का कार्य कराने वाला कौन? परमेश्वर। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। ठीक है, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि अभी भी कोई प्रश्न है? अभी तो कोई प्रश्न नहीं ना। अब अगर आपका बेटा या आपका पोता आपसे सवाल पूछे कि ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? दे सकेंगे? ठीक है, अच्छा, अभी तो मन लगेगा ना, कि अभी भी शिकायत है कि मन नहीं लगेगा ईश्वर में, अभी तो लगेगा ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं ध्यान के लिए। भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु शांति दो, सुख दो, ये सब मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे बाहर धूप में खड़े रहो तो सूर्य से मांगते नहीं है कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी, रोम रोम के अंदर गर्माइश भर जाएगी। नदी के पास खड़े रहकर नदी से मांगना नहीं होता है कि हे नदी तेरी शीतल हवा मुझे दे, आप खड़े रहो, पूरा रोम रोम शीतलता से भर जाता है। इसी तरह ईश्वर से भी मांगने की जरूरत नहीं, ध्यान को एकाग्र करो उस दिव्य स्वरूप पर, और जैसे उस दिव्य स्वरूप पर ध्यान को एकाग्र करेंगे, उस परमात्मा शक्ति का प्रवाह भी शुरू हो जाता है और उसको हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। तभी चलते हैं थोड़ी देर के लिए ध्यान के लिए, स्वस्थ होकर के बैठेंगे सभी, पीठ सीधी हो, और कुछ क्षण के लिए अपने ध्यान को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, ब्रकुटी के मध्य में प्रकाश पुंज के रूप में। ये शरीर मेरा वस्त्र है, जो मैंने धारण किया है, संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने, वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हूँ, न्यारी हूँ। धीरे धीरे अपने मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर। ईश्वर के सानिध्य में, पंच तत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, अखंड ज्योति के महातत्व में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं। न कोई बंधन है, न कोई बोझ है, मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में। जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय है। कितना सुंदर ईश्वर के सानिध्य में स्वयं को महसूस कर रही हूं। परमात्म शक्ति से सर्व शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर सकती हूं। परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणों को मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूं, शक्तिमान होती जा रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में ब्रकुटी के मध्य में स्थित होती हूं। और परमात्मा ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूं। ओम शांति शांति शांति।